तफसीर आयत नंबर 192 से। और यहां पर जो है दोबारा जो आगाज है सूरत का उस तरफ जो है वो मजमून पलटता है। और सूरत के आगाज में अल्लाह ताला ने क्या बताया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तसल्ली दी थी कुरान का किताब इलाही होना, कि ये अल्लाह की किताब है, ये वाजे है। और अहले मक्का क्या कर रहे थे, वो मुजजे का मुतालबा कर रहे थे। तो दोबारा कहा वा इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, ये कुरान मजीद रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा चीज है। लतंजीलु, तंजील जब आता है ना इसके मानी होते हैं एहतमाम और तरतीब के साथ दर्जा ब दर्जा थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना। तो अल्लाह ताला जो है सूरत के इख्तिताम पर दोबारा सूरत के आगाज के मजमून की तरफ जो है वो पलटते हैं और बताते हैं कि ये कुरान मजीद रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा चीज है। नजला बिहिर रूहु रू नजला बिहिर रूहुल अमीन, नजला नाजिल हुआ बिही इस कुरान को लेकर, अर रूहुल अमीन ईमानदार रूह। और यहाँ पे रूहुल अमीन से मुराद है जिब्रील अलैहि सलाम, कि कुरान मजीद को हजरत जिब्रील अलैहि सलाम जैसा ईमानदार फरिश्ता लेकर उतरा है। इसके क्या मानी है, यानी ये दरअसल कुरान मजीद जो है ये इसकी तारीफ की जा रही है कि कुरान मजीद जो है ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है और इसको ईमानदार फरिश्ता लेकर आया है। और उस फरिश्ते ने, ईमानत वाले फरिश्ते ने लाकर आप तक अल्लाह के अहकाम पहुंचाए हैं और इन अहकाम के अंदर कोई कमी बेशी नहीं की। जो अल्लाह के अहकाम थे वो एग्जैक्ट वही अहकाम जो हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो ईमानदार हैं वो लेकर नाजिल हुए। अला कल्बी का, तेरे दिल पर, यानी इसे लेकर तेरे दिल पर ईमानदार रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे हैं। क्यों आपके दिल पर जो है वो कुरान को नाजिल किया, लितकूना मिनल मुनजरीन, ताकि तू उन लोगों में शामिल हो जाए, लितकूना ताकि तू हो जाए मिनल मुनजरीन लोगों को खबरदार करने वालों में से, यानी तेरा शुमार उन लोगों में हो जाए जिनको अल्लाह ताला ने दूसरों को जो है दावा करने के लिए चुना है, ताकि तू जो है वो पैगंबरों में से हो जाए। बिलिसानिन अरबी मुबीन, कुरान मजीद जो है वो एक ऐसी जबान में है जो कि अरबी है, मुबीन बिल्कुल साफ साफ। और कुरान की जबान ऐसी नहीं है जो किसी की समझ में ना आए, बड़ी वाजे ये जबान है। और अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को उस कौम की जबान में भेजा ताकि लोग ये उजर ना तराश सकें, ये बहाना ना कर सकें कि हमें तो समझ ही नहीं आता तो हम जो है इस पर अमल कैसे करें। तो यहां पर भी यही बात कही जा रही है कि ये कुरान मजीद जो है ये अरबी जबान में है। तो कुरान को नाजिल करने का मकसद क्या था, ताकि आप लोगों को डराएं। लितकूना मिनल मुनजरीन बिलिसानिन अरबी मुबीन वा इन्नहु लफी जुबुरिल अव्वलीन, और बेशक वो हु की जमीर, एक राय ये है कि ये कुरान के लिए है, दूसरी राय ये है कि ये रसूल के लिए है, कि और बेशक वो है यानी कुरान और रसूल, और एक ही बात है कि रसूल कुरान लेकर आए। लफी जोबरिल अव्वलीन, ये अगले लोगों की किताबों में मौजूद है। तो कुरान के बारे में, कुरान का जो मजमून है ये साबिक कुतबे आसमानी में मौजूद है। दूसरी बात क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो पिछली किताबों में भी आया है, आपकी सिफात का जिक्र है, आपकी जहूर, आपकी बेसत, आखिरी नबी आएगा कब आएगा, आपकी क्या सिफात होंगी, تو رسول اللہ کے بارے میں بھی اور قرآن کے بارے میں بھی جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں ہے. تو قرآن کیا تھا؟ پچھلی کتابوں کا نچوڑ خلاصہ. قرآن کیا ہے؟ پچھلی کتابوں کا خلاصہ. وَإِنَّهُ اور قرآن اور رسول جو ہیں لفی زبر الاولین. زبر زبور واحد ہے اور وہ کسی بھی تلاوت کی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں جو آسمانی کتاب ہے, اور زبر جمع ہے الاولین, پہلے رسولوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے. اولم یکل لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک سوال رکھتے ہیں اہل مکہ کے سامنے کہ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں. اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ پیش کریں, اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اہل مکہ کے لیے یہ نشانی نہیں ہے, ایک طرف قرآن کا ذکر کیا کہ یہ معجزہ ہے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولم یکل لہم, کہ کیا نہیں ہے ان کے لیے آیتن نشانی معجزہ ان یعلمہ کہ جانتے ہیں اس کو, کس کو؟ قرآن کو, رسول کو. کون؟ علماء بنی اسرائیل. علماء بنی اسرائیل جو ہیں واقف ہیں قرآن مجید کی تعلیمات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں میں قرآن کا بھی ذکر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر تھا, اور یہودی اس بات کو مانتے تھے. پھر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْدِ الْعَاجَمِينَ. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ, اور اگر ہم اس کو نازل کر دیتے قرآن کو, عَلَىٰ بَعْدِ الْعَاجَمِينَ, کسی غیر اہل زبان پر. عجمی عین جیم میم اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہوتے گنگا. عجم گنگے کو بھی کہتے ہیں, اوپری زبان والے کو کہتے ہیں, یا عجمی جو ہے غیر فصیح عرب, غیر عرب کو کہتے ہیں. عجم واحد ہے اور عجمین اس کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو عربی ہی شخص کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, عربی زبان میں اس کو نازل کیا, جیسے سورت یوسف میں ہے نا, انا انزلناہ قرآنا عربیا. پھر سورت رعد آیت 37 میں وکذلک انزلناہ حکما عربیا. پھر سورت زمر آیت 28 میں قرآنا عربیا غیر ذی عوج. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ عربی لوگوں میں, عربی جو پیغمبر پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا, اور باقی لوگ بھی جانتے ہیں پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے, تو اب ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر ہم اسے کسی عجبی پر نازل کر دیتے. فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ, اور وہ ان کو سناتا. فَقَرَاهُ, اور وہ اس قرآن کو پڑھتا. عَلَيْهِمْ, ان پر. مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ, تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے. یعنی اب فصیح زبان میں انہی کا ہم زبان جو ہے ان کو سکھا رہا ہے, تو یہ اس پر ایمان نہیں لاتے. اور اگر ہم کسی اجمی پر نازل کرتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا, تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. ما کانو بہی مؤمنین, تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے. تو اب یہ کیا کہتے تھے؟ اب یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کسی اور سے سیکھتے ہیں. تو پھر یہ کیا بہانہ کرتے؟ اس وقت یہ کہتے کہ اجمی کی زبان سے عربی ہم نہیں مانتے. تو عربی کی زبان سے عربی نہیں مانتے تو اجمی کی زبان سے عربی کو کیسے مان جاتے؟ ما کانو بہ مؤمنین. تو یہ کہتے ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ایک اجمی سنا رہا ہے نا. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم اس ذکر کو, قرآن کو, مجرموں کے دلوں میں گزارا کرتے ہیں. سلکناہ, سین لام کاف جو ہے سلکا, اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے سوئی کے اندر سے دھاگا پرونا, کسی چیز کو کسی چیز میں سے گزارنا. تو سلکا کے مطلب ہوتا ہے گھسا دینا, داخل کر دینا. تو اسی طرح ہم نے داخل کیا ہے اس قرآن کو. فی قلوب المجرمین, مجرموں کے دلوں میں. تو اہل حق کے دلوں میں تو قرآن جو ہے ان کے دلوں میں سکون بن جاتا ہے, ان کے دلوں کی بہار بن جاتا ہے, لیکن جو مجرم ہوتے ہیں گرم لوہے کی سلاخ بن کر ان کے اندر سے گزرتا ہے. تو جو ہی وہ قرآن کو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ गुस्से में आ जाते हैं, वो कुरान के खिलाफ हो जाते हैं। तो कुरान को सुनते ही, यानी जब कुरान उनके दिलों के अंदर जाता है, गुजरता है, टकराता है, तो कुफर करते हैं, अनाद करते हैं, शिर्क करते हैं और इसका इनकार करते हैं। ला युमिनूना बिही, वो इस पर ईमान नहीं लाते। हत्ता यरावुल अजाब अल अलीम, जब तक कि वो अजाब अलीम को ना देख लें। फयातियहुम बगतन वहुम ला यशऊरून, तो वो दर्दनाक अजाब जो है, फयातियहुम बस आएगा इन पर बगतन अचानक, बागनता इसका रूट है, तो अचानक यका यक इन पर आएगा, वहुम ला यशऊरून, और इन्हें जो है कुछ भी शऊर नहीं होगा। फयकूलू, और उस वक्त ये कहेंगे, हल नहनु मुनजरून, क्या अब हमें कुछ मोहलत मिल सकती है, यानी अजाब को सामने देखकर उस वक्त ये कहेंगे, हसरत के साथ हाथों को मल मल कर, आंखों को मल मल कर, काश कि अब हमें कुछ मोहलत मिल जाए, लेकिन मोहलत का वक्त जो है वो गुजर चुका होगा। अफा भी अजाबिना यस्ताजिलून, तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अफा रईता इम्मता नाहुम सिनीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि अब ये अजाब में जल्दबाजी कर रहे हैं कि अगर हम इनकार करते हैं तो अजाब क्यों नहीं आ जाता। अफा रईता, क्या देखा तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इम्मता ना हम, अगर हम जो है वो माल देते हैं इनको, सनीन मुद्दतों कई साल, यानी अगर हम इन्हें बरसों तक ऐश करने की मोहलत दे रहे हैं, मत्ता ना हम, माल दे रहे हैं, दौलत दे रहे हैं, ऐश करने दे रहे हैं, सनीन सालों, सनत तुन वाहिद है, सनीन जमा है। सुम्मा जा अहुम्मा कानू यू अदून, फिर वही चीज इन पर आ जाए जिसे इनसे डराया जा रहा है, यानी खुद ही ये अजाब का मुतालबा कर रहे हैं ना, और इनको बताया भी जा रहा है कि अगर इन्होंने नाफरमानी की और ये ईमान ना लाए तो इन पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। तो फिर जब वो अजाब इन पर आ जाएगा जिसका इनसे वादा किया जाएगा, मा अग्ना अन्हुम मा कानू युमत्ताउन, तो उस वक्त वो समाने जीस्त, वो फायदे जो ये दुनिया में उठाते रहे, मा अग्ना अन्हुम, वो इनके किस काम आएंगे। मा कानू युमत्ताउन, जो कुछ इन्हें दिया गया है जिससे ये फायदा उठाते हैं, जो थे वो फायदा उठाते, तो मालो दौलत मकान महल्लात जैसे पिछली कौमों के वाकयात हैं वो उनके काम ना आए, तो इसी तरह ये जो अहले मक्का हैं ये अपनी सरदारियों के अंदर, अपने बागों के अंदर जो चैन की बंसरी बजा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो ये क्या समझते हैं कि इनका ये मालो दौलत इनके किसी काम आएगा। क्या आद समूद कौमे लूत असाबुल एका कौमे स्वाले अलैहिस्सलाम जो अंबिया हैं, तो क्या उनकी कौमें जो थी उनका मालो दौलत और उनके बाग और उनके महलात उनके कुछ काम आए। वमा अहलकना मिन करियतिन इल्ला लहा मुनजिरून, अल्लाह ताला कहते हैं और नहीं हमने हिलाक किया, मिन करियतिन किसी बस्ती को, और हमने कोई बस्ती हिलाक नहीं की, मगर क्या किया, इल्ला लहा मुनजिरून, मगर उसके लिए नसीहत करने वाले पहले भेज देते थे, यानी उनके अंदर रसूल आए, उन्होंने उनको समझाया, अगर फिर भी वो ना माने तो हमने एक मोहलत गुजरने के बाद जो मुद्दत उनकी मुतय्यन थी, फिर उसके बाद उन्हें तबाहों बर्बाद कर दिया। जिक्रा, जिक्रा ताकि नसीहत करे, कौन, वो जो रसूल भेजे थे, वो जो पैगंबर थे, इल्ला लहा मुनजिरून, जो उनके अंदर डराने वाले भेजे थे, जिक्रा पैगंबर नसीहत करने वाले, वमा कुन्ना जालिमीन, और हम जालिम ना थे। बड़ी खूबसूरत बात है जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताई है कि हमने जो है वो अदल के तकाजे पूरे किए हैं, हमने कभी किसी कौम के साथ जुल्म नहीं किया, और अदल के तकाजों को पूरा करने के लिए पहले हमने हर बस्ती में रसूल भेजा जिसने बस्ती वालों को अल्लाह के अजाब से डराया, और जब बस्ती वालों ने अल्लाह के पैगंबर की बात न मानी तो हमने उन्हें हिलाक कर दिया। यही मजमून आप पहले सूरत बनी इसराइल और सूरत कसस इसमें भी पढ़ चुके हैं, और हम जुल्म करने वाले ना थे। اور عرب کے علاقے میں پانچ پیغمبر مشہور تھے جو آ چکے تھے، جن میں حضرت ہود علیہ السلام، احقاف کے علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وہ جانتے ہی تھے. اب دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 210 ہے، اور یہاں پر جو ہے ایک اور اہم بات جو ہے وہ سامنے رکھی جا رہی ہے. کیوں؟ مخالفین جو تھے وہ قرآن کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کسی شیطان کا سکھایا ہوا ہے، یا کہتے تھے یہ کسی کاہن کا کال ہے، یا پیارے رسول کو جادوگر کہتے تھے، یا کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہیں. تو اب یہاں پر انہی کی تردید کی جا رہی ہے. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ، اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وَمَا تَنَزَّلَتْ، اور نہیں نازل ہوئے، اور نہیں نازل ہوتے بھی اس قرآن کے ساتھ، الشیاطین شیاطین. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، نمبر ایک، اور نہیں ہے لائق ان کے، بغا یبغی، چاہنا، اور وہ یہ نہیں چاہتے، یہ کام ان کو سجتا نہیں ہے شیاطین کو. شیاطین کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ جاہل، سب کے سب گمراہ. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، تو ان کو یہ کام جو ہے یہ سجتا نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے. کیوں شیاطین قرآن لے کر نازل نہیں ہوتے؟ نمبر ون، کہ وہ اس قابل نہیں ہے، یہ کام ان کو سجتا نہیں ہے. نمبر دو، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں اس کی طاقت ہے، ان کے اندر اس کی طاقت ہی نہیں ہے. یعنی اگر شیاطین کرنا بھی چاہیں تو یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے. کیوں؟ شیاطین کی نیت کی خرابی، ارادوں کی ناپاکی، اور مقاصد کی خباثت جو ہے، وہ ان کو قرآن جیسا بہترین کلام جو ہے وہ پیش کرنے سے روکتی ہے، وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ پیغمبر ہی اس کو پیش کر سکتا ہے، سچا معلم، خالص حق اور خالص خیر کی تعلیم دینے والا. کیونکہ شیاطین تو دھوکا دیں گے نا، اور دھوکے کے اندر سچائی نہیں ہوتی، صداقت نہیں ہوتی، ملاوٹ ہوتی ہے. آیت نمبر 212، انہم عن السمع لمعزولون. یہاں پہ دراصل قرآن کی تعریف کی گئی ہے کہ انہم، یہ جو شیاطین ہیں، عن السمع، سماعت سے، سننے سے، شیاطین قرآن کی سماعت سے، اس کے سننے سے، لمعزولون، دور رکھے گئے ہیں. لمعزولون جو ہے اس کا روٹ ہے عین زا لام، اس کے معنی ہے الگ کرنا. معزولون جو ہے یہ جمع ہے، معزول واحد ہے، جیسے کہتے ہیں نا فلاں کو معزول کر دیا گیا، تو روک دینا، الگ کر دینا، ازل، عین زا لام، روکنا، الگ کرنا. تو لا معزولون، وہ تو قرآن سننے تک سے جو ہے وہ دور رکھے گئے ہیں. اب یہاں پر پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کر دیتے ہیں. یعنی وہاں سے لا کر رسول اللہ تک پہنچانے میں کوئی شیاطین جو ہے نا کان لگا کر سن نہیں سکتا، وہ پاس پھٹک بھی نہیں سکتا، وہ قرآن کی وحی کی کوئی بات سن گن اس کی لے کر جو ہے وہ اس میں کچھ چینج نہیں کر سکتا. یہی بات بتائی جا رہی ہے، انہم عن السمع لمعزولون، کہ وہ اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے نہیں آپ کو جو ہے وہ دھمکی دی جا رہی یا دھمکی دے کر آپ کو روکا جا رہا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مقصد کفار اور مشرکین کو ڈرانا ہے. چونکہ قرآن مجید کی اصل تعلیم کیا تھی؟ کہ لوگ ایک اللہ کی بندگی کریں، اور اس سلسلے میں खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रियायत नहीं की गई, तो कोई और जो है वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो शिर्क करे और फिर जो है वो बच जाए। तो दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहकर दूसरों को सरजनश की जा रही है। और क्या बात बताई जा रही है कि जो शिर्क है ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। तो ये सारी शिर्किया बातें थी जो उस जमाने में भी वो लोग करते थे। मसलन जैसे आज भी लोग कहते हैं सितारे बोलते हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा, काला कव्वा काय काय कर गया और आज दिन ऐसा गुजरेगा, सफर नहीं करना क्योंकि कव्वा काय काय कर रहा था। जैसे वो औरत कहने लगी कि वो मियाँ चले गए और जो है वो कव्वा सुबह ही बैठकर काय काय कर रहा था, और फिर मैं तो पहले ही मेरा तो दिल धड़का कि कव्वा काय काय कर रहा था, काला कव्वा बाहर बैठा था, तो ये तो मियाँ का जाना सही नहीं था, या उल्टा जूता पैंचा उल्टा हो गया, या कोई खास दिन उसको मनहूस लोग समझ लेते हैं, या फिर कोई नंबर जैसे यहाँ पे 13 नंबर जो है वो नहुसत की अलामत समझा जाता है। तो अहले मक्का जो थे वो भी क्या करते थे कि वो भी इस तरह के अकायद रखते थे और शिर्क करते थे। तो अब यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का खास एहतमाम किया है, और फिर खास बात क्या है कि तौहीद परस्त होना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके पहली बात तौहीद की कही गई, और दूसरी बात वह अंजिर अशीरतकल अकरबीन, अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ। वह अंजिर और डराइए, अशीरत तक आइन शीन रा अशर ये 10 को कहते हैं ना, और इससे मुराद है अशीरतुन, इससे मुराद है कबीला कुंबा रिश्तेदार, कि आप अपने रिश्तेदारों को डराइए। कौन से रिश्तेदार? अल अकरबीन, जो करीबी हैं। अब आप देखेंगे पैगंबर की दावत जो है सिर्फ रिश्तेदारों के लिए नहीं होती बल्कि पूरे पूरी कौम के लिए होती है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नस्ल इंसानी के लिए हादी रहनुमा और जो है वो कायद बनकर आए। अब यहाँ पर जो है अब खास तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को जो है वो डराइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस हुक्म के बाद कोहे सफा पर चढ़े, या सबाह कहकर आवाज दी। ये कलमा अहले मक्का उस वक्त बोलते थे जब दुश्मन अचानक हमला कर दे, मकसद कौम को खबरदार करना होता था। जब कलमा सुनकर लोग जमा हो जाते तो फिर वो अपनी अहम बात करते। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब ये आयत नाजिल हो गई तो फिर आप कोहे सफा पर चढ़े, या सबाह या सबाह या सबाह कहा। जब कुरैश के मुख्तलिफ कबीलों का नाम लेकर आपने फिर पुकारा, जब लोग जमा हो गए तो आपने कहा कि बताओ अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ की पीठ पर दुश्मन का लश्कर मौजूद है जो तो तुम पर हमला आवर हुआ चाहता है, तो क्या तुम मानोगे? सबने कहा कि हाँ यकीनन हम तस्दीक करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने नजीर बनाकर भेजा है, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराता हूँ। इस पर अबू लहब ने कहा तब्बन लका अमा दाऊतना इल्ला लिहाजा, तेरे लिए हिलाकत हो गया, तूने हमें इसलिए बुलाया था। जिसके जवाब में सूरत तब्बत यदा अबीला बेऊ तब नाजिल हुई। ये सही बुखारी की रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा, अपनी फुफो सफिया रदी अल्लाह अन्हुमा को भी फरमाया कि तुम अल्लाह के यहाँ बचाओ का बंदोबस्त कर लो, मैं वहां तुम्हारे काम नहीं आ सकूंगा। ये भी सही मुस्लिम की रवायत है। तो इस आयत के नाजिल होने के बाद फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी खास तौर पर अपने करीबी लोगों को जो है वो मुखातिब किया, क्योंकि आपको हुक्म दिया जा रहा है कि अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को भी साफ साफ डराइए कि कयामत के दिन फैसला जो है हसब और नसब की बिनाद पर नहीं होगा, हसब और नसब की बुनियाद पर नहीं होगा बल्कि मेरिट पर होगा। किसी का हसब और नसब उसको फायदा नहीं दे सकता, हत्ता के नबी भी अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرح سے اپنے قبائل کو کہا تھا کہ اے عباس، اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ رسول، اے صفیہ رسول اللہ کی پھپھو، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو، میں اللہ کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا، البتہ میرے مال میں سے تم لوگ جو کچھ چاہو مانگ سکتے ہو. پھر آپ نے صبح سویرے صفا کے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پکارا، پکارا یا صباح، ہائے صبح کا خطرہ اے قریش کے لوگو، اے بنی کا بن لوئی، اے بنی مرہ، اے آل قصہ، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد شمس، اے بنی ہاشم، اے آل عبد المطلب. اس طرح قریش کے ایک ایک قبیلے اور خاندان کا نام لے کر آپ نے آواز دی. اور جب وہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور پھر آپ نے وہی کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات سنو گے، سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ تجربہ ہے آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا، تو میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، قیامت میں میرے رشتے دار صرف متقی لوگ ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے آؤ. اس وقت تم پکارو گے یا محمد، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں گا، البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں گا. تو اس طرح کا مضمون جو ہے ہمیں بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، نسائی اور جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. تو اس سے عمل کا اصول کیا نکلتا ہے کہ نبی کا کام کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے خود نیک بنے، نمبر دو اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے وہ ڈرائے، پھر عام سب لوگوں کو ڈرائے. تو اس سے ہمارے لیے بھی عمل کا یہ اصول نکلتا ہے کہ ہم خود نیک بنے اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ اللہ سے ڈرائے. اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو ہے سود جو ہے اس کو جب ختم کیا تو آپ نے کہا زمانہ جاہلیت کا ہر سود جو لوگوں کے ذمے تھا میرے ان قدموں تلے رون ڈالا گیا، اور سب سے پہلے جس سود کو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا ہے، یعنی جس جس سے میرے چچا عباس نے سود لینا ہے اب وہ ختم، کوئی سود نہیں ہے، کیونکہ ان کے چچا عباس کا سود ہی کاروبار تھا. حضرت عباس جو تھے سود پر روپیہ چلاتے تھے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ چوری کے جرم میں قریش کی ایک عورت فاطمہ نامی کا ہاتھ کاٹنے کا جب حکم دیا گیا، حضرت اسامہ بن زید نے اس کے حق میں سفارش کی رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تو اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 215 میں ایک اور اہم حکم دیا گیا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. تو جو لوگ آپ کی اطاعت کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَخْفِضْ، خَافَ دُعَات جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے پرندہ جب اترتا ہے تو پروں کو پوری طرح بچھاتا ہے اور اپنی رفتار کو کم کر لیتا ہے. تو وَخْفِضْ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جھکا دینا، جھکا دینا، پست کر دینا، تواضع اختیار کر لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ عاجزی اختیار کیجئے، آپ جو ہے وہ تواضع سے پیش آئیے. وَخْفِضْ، آپ جھکا دیجئے جناح کا اپنے کندھے، یعنی اپنے کندھے جھکا دینے سے مراد کیا ہے کہ آپ تواضع سے پیش آئیں. لمن، ہر اس شخص کے لیے، اتباع کا جو آپ کی پیروی کرے، من المومنین، مومنین میں سے. तो यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम्हारे रिश्तेदारों में से जो लोग ईमान लाकर आपकी पैरवी इख्तियार करें तो आप उनसे नरमी का रवैया इख्तियार करें। और जो आपकी बात ना माने इनसे ऐलान बरात कर दे। ये आयत नंबर जो 215 है इसके एक और मानी भी हैं, और इससे मुराद जो है कि ये जो आपने नरमी का रवैया अख्तियार करना है, इससे मुराद सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि आम लोग भी हैं। जो भी ईमान लाकर आपका इत्तबा करे, आप इससे नरमी से पेश आए, इससे तवाजो का रवैया इख्तियार करें, उसके लिए अपने कंधे झुका दें। जैसे परिंदा जो है जब उतरता है तो अपने परों को बिछाता है, अपनी रफ्तार को कम कर देता है। तो दरअसल मुफस्सरीन कहते हैं कि यहां पर हुब्बुल्लाह की पूरी तालीम दी गई है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए दुश्मनी। और ये जो आयत नंबर है 215, इसमें अल्लाह के लिए मोहब्बत की तालीम है, और आयत नंबर 216 जो है इसमें अल्लाह की खातिर जो है वो नाराजगी की तालीम है। फ़ैन असऊ का, बस अगर वो आपकी नाफरमानी करें, फ़क़ुल तो ऐलान कर दीजिए इन्नी बरी मिम्मा तामलून, कि मैं उससे बरी हूँ जो कुछ तुम लोग करते हो। फतवक्कल अलल अजीज रहीम, और उस जबरदस्त और रहीम पर आप तवक्कुल कीजिए कि किसी बड़ी से बड़ी ताकत की परवाह नहीं करनी, किसी से डरना नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ एक अल्लाह की जात पर जो है वो आपको भरोसा करना है। ये बड़ी ही खूबसूरत तालीम है जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की है। और आपने आयत नंबर 62 में सूरत अश्शुरा में पढ़ा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग चीख उठे थे कि इन्ना लमुद्रकून, आयत 61 में, कि हम तो पकड़े गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 62 सूरत अश्शुरा में कहा, قال كلا إن معي ربي سيهدين, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। यहाँ पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप किसी से भी मत डरिए, फतवक्कल अलल अजीज रहीम, उस जबरदस्त और रहीम पर तवक्कुल कीजिए, अल्लज़ी यराका हीना तकूम वतकल्लुबका फिस्साजिदीन इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, तो वो जबरदस्त और रहीम, उस पर आप तवक्कुल कीजिए। वो कौन है? वो जो अल्लज़ी यराका, जो आपको देखता है, उस वक्त देख रहा होता है, हीना तकूम, जब आप उठते हैं। और यहाँ पे उठने से मुराद क्या है? मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके मानी है कि जब आप जो है वो रात के वक्त नमाज के लिए उठते हैं तो उस वक्त आप अल्लाह की नजर में होते हैं, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जो है वो देख रहे होते हैं। रात को इबादत के लिए जब उठते हैं, कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला आपको देख रहे होते हैं। नंबर दो, जब आप दावत और तबलीग के लिए आप उठते हैं, लोग आपके साथ क्या सलूक करते हैं, क्या क्या मामला करते हैं, तो अल्लाह आपको देख रहा होता है। जब आप तनहा होते हैं, अल्लाह तब भी आपको देखता है, जब आप लोगों में होते हैं तब भी अल्लाह को देखते हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये बड़ी अहम बात है कि आप जिस भी हाल में होते हैं तो अल्लाह आपके साथ होता है। आयत नंबर 219, वतकल्लुबा का फिस्साजिदीन, तकल्लुब काफ लामबा कल्ब, दिल को कहते हैं, और यहाँ पे लाम पर शद भी है, और यहाँ पे इसके मानी है उलट पलट, तेरा आना तेरा जाना, एयाब और जहाब के। फिर फरमाया वतकल्लुबा का, और आपका आना जाना, तुम्हारी नकलो हरकत, फिस साजिदीन इबादत गुजार लोगों में, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर अल्लाह ताला जो है वो नजर रखते हैं। मानी क्या है कि आपकी तमाम दौड़ धूप से अल्लाह ताला वाकिफ है, आप अपने सजदा गुजार साथियों के साथ लोगों की इसलाह के लिए जो कुछ कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो मेरी नजरों में है। आप किसकी कैसी तरबियत कर रहे हैं, कैसा तस्किया कर रहे हैं, आप कैसे मेहनत कर रहे हैं, आप किस तरह से जो है वो कोशिशें करते हैं, सब मेरी नजर में है। वतकल्लुबा का फिसाजिदीन इन्नहु हुवस समीउल अलीम, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता है और वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। तो ये जो आयत नंबर 217 है, 217 से लेकर 220 तक, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है और ये पैगाम दिया गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे जो है वो पीछे हूं, तुम्हारी पुश्त पर मैं हूं, और जिसके पीछे अल्लाह हो कोई उसको नीचा नहीं दिखा सकता। और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अहले मक्का आपके साथ जो सलूक कर रहे हैं वो सब मेरी नजरों में है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 221 है, और अहले मक्का ने आप पर एक इल्जाम और लगाया था, वो क्या कहते थे कि आप तो शायर हैं। अल्लाह ताला ने कैसी खूबसूरत आपकी और आपके सहाबा की तारीफ की है कि आप साजिदीन के साथ जो कुछ कर रहे होते हैं वो मेरी नजरों में है। और अहले मक्का का ये कहना कि आप शायर हैं और जो है वो शैतान काहिनों पर उतरता है और आपको वो काहिन कहते थे, तो अल्लाह ताला के यहाँ पे कहते हैं कि हल उन नबियों को कि लोगों क्या मैं बताऊं तुमको अला मन तनज़्ज़लु शयातीन के शयातीन किस पर उतरा करते हैं, तनज़्ज़लु अला कुल्ले अफ़ाकिन असीम, शयातीन जो है उतरा करते हैं हर अफ़ाक, अफ़ाक झूठे को कहते हैं, ये इफ्क से है और ये मुबालगे का सीगा है। तो शयातीन जो है हर अफ़ाक पर, झूठे पर, इंतहाई झूठा, इफ्क से ये मुबालगे का सीगा है, बिल्कुल ही बात को उलट कर देने वाले, तो हर झूठे पर, जालसाज पर, असीम, असीम जो है ये फईल के वजन पर है, ये भी मुबालगे का सीगा है और मुराद है कि गुनागार पर, बदकार पर। फरमाया कि जो शैतान है ये झूठे पर और गुनागार पर उतरते हैं, मुराद है काहिन, फाल निकालने वाले, और आमिल, गोलदार, लच्छेदार बातें करने वाले, वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास जिन है, रूहें हैं, मुअक्कल है, हम लोगों की बिगड़ी जो है वो बना सकते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान इनके पास उतरा करते हैं, जो बदकार हैं, झूठे हैं। युल्कून अस्समा, युल्कूना वो फूंकते हैं, वो डालते हैं, अस्समा, समा जो है सुनी सुनाई बात को कहते हैं, यहाँ पे समा के मानी है मसबू, बेमानी मसबू यानी सुनी हुई बात, तो शैतान जो है वो डालते हैं अस्समा सुनी सुनाई बात को, वह अक्सर हम काज़िबून और इनमें अक्सर झूठे होते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ये जो शैतान है इसका किरदार जो है वो वाज़े किया है, तो शैतान तो झूठों और गुनाहगारों पर उतरते हैं ना कि नबियों पर और सालहीन पर। तो शैतान कौन थे, काहिन, नजूमी वगैरह, जैसे आज के दौर में भी लोग पाए जाते हैं जो बातें करते हैं कि हमें सब पता चल जाता है। बुखारी मुस्लिम की रवायत है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, बाज लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के बारे में दरियाफ्त किया, तो आपने फरमाया कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह बाज औकात वो लोग सही बात बताते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन छुप कर उसे सुन लेता है और अपने दोस्त काहिन के कान में डाल देता है, जिसमें काहिन अपनी तरफ से 100 से ज्यादा झूठ मिला देता है। तो इस तरह जो है वो काहिन जो है वो बात से बात को कुछ से कुछ करके जो है वो फिर आगे बयान करते हैं और इनमें से अक्सर झूठे होते हैं। अब दूसरा इल्जाम जो है वो अहले मक्का रसूलुल्लाह पर क्या लगाते थे कि आप शायर हैं, एक क्या कहते थे कि आप काहिन हैं, तो अल्लाह ताला ने बताया है कि काहिनों की इस तरह के औसाफ होते हैं। अब देखिए शायर कौन होते हैं, वश्शोराउ यत्तबिउहुमुल गावून, इसी पर सूरत अश्शोरा का नाम भी रखा गया। और शायरों की पहली सिफत क्या है कि इनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं। गावून गैन वो या से है, गैन वो या और गुमराही के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, इगवा करना भी इसी से है। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ले वादी यही मून, अल्लाह ताला पूछते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि शायर जो है फी कुल्ले वादिन हर वादी में यही मून भटकते रहते हैं। जैसे प्यासा ऊंट होता है ना, और वो प्यास को बुझाने के लिए इधर उधर जाता है, उसकी प्यास नहीं बुझती, तो ऊंट के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी इसका रूट है हा या मीम, हा या मीम, और सरकर्दा फिरना, परेशान फिरना, अवारा फिरना, इधर उधर जाना। तो ये जो है ये शायरों की जो है वो सिफ्त बताई जा रही है, नंबर एक कि वो गुमराही की बातें करते हैं, और नंबर दो कि वो हर वादी में भटकते हैं। इसके मानी क्या है कि वो बगैर सोचे जो है वो बात करते हैं, कोई एक लहर उठी तो हिकमत की बातें, दूसरी लहर उठी तो गंदगी की बातें, किसी से खुश हुए तो उसको आसमान पर चढ़ाया, नाराज हुए तो उसको तहत सरा में जा गिराया। एक बकील को हातिम कह देते हैं शायद लोग, एक बुजदिल को रुस्तम, यानी जो चाहे कहें, किसी की पाक जिंदगी पर धब्बा लगाएं तो उस पर शायरी करते जाएंगे, किसी की इज्जत पर खाक फेंकना चाहें तो उस पर ताने देने लगेंगे। शायर जो थे उस जमाने में ऐसे ही थे जैसे किसी कबीले का कोई अखबार हो, और अगर वो किसी की तारीफ करना चाहते थे तो भी जबरदस्त तरीके से, यानी मीडिया था वो, जैसे आज मीडिया का दौर है ना, तो वो ऐसे करते थे। और आज भी आप देख लें कि शायरी में आमतौर पर क्या होता है, इश्कबाजी, शराब नोशी, और किसी की बहू बेटी के हुसन का तस्करा होता है, कभी सेक्स की जिंस की बातें होती हैं, शाहवानियत की बातें होती हैं, मस्खरापन होता है, ठट्टेबाजी होती है, हजब बयान हो रही होती है, बहरहाल, और बेजा तारीफ होती है। तो जो लोग शायरी को सुनते हैं तो किसी के खिलाफ तो नफरत उनके दिल में पैदा होती है, और कभी उनके दिल में आग लग जाती है। तो शायरी जो है आम तौर पर शायरी में शायर क्या करते हैं कि इखलाक की बंदिश से आजाद होते हैं, जज्बात और ख्वाहिशात की रौ में बहते हैं, लुत्फ और लज्जत और हुसन के परस्तार होते हैं, और उनका कोई खास, उनके सामने कोई मकसद नहीं होता, नस्बुलैन नहीं होता। तो यहाँ पे जो उस जमाने की आम शायरी थी उसको अल्लाह ताला ने जो है वो बयान किया। इसका ये नहीं मतलब कि शायर सारे ही बुरे होते हैं और शायरी जो है वो गलत होती है। तो असल में शायरी की बुनियाद चूंकि तखय्युल पर होती है, हकायक और वाकयात पर नहीं होती, और हमेशा ज्यादातर ये ख्यालात की दुनिया में परवाज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बात जो है वो बताई जा रही है। ये जो दो आयतें हैं, ये तीन आयतें जो हैं इनके बारे में, नंबर एक कि इनके पीछे बहके हुए लोग चलते हैं, नंबर दो वो हर वादी में भटकते हैं जैसे एक बेलगाम घोड़े की तरह, वो अपने जज्बात और ख्वाहिशात की रौ में एक नया मजमून बयान करते हैं बगैर सोचे समझे, और नंबर तीन فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, और वो ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं, यानी उनके कौल और फेल में तजाद होता है। ये थी शायरों की एक और खसूसियत। बहादुरी की बात करेंगे खुद बुजदिल होंगे, कनात की बात करेंगे खुद उनके अंदर हिर्स होगा, दूसरों की कमजोरियों पर गिरफ्त करेंगे खुद बदतरीन कमजोर होंगे। तो ये कैसे होते हैं, कॉल और फेल के अंदर इनके जो है वो तजाद होता है। अब अल्लाह ताला जो है ये आखिरी जो आयत है इसमें जो है वो बता रहे हैं कि कौन से शायर जो हैं या कौन सी शायरी अच्छी शायरी होती है। نمبر ایک اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر دو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے عمل صالح کیے. تو پہلی صفت کیا کہ مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں. نمبر دو ان کی عملی زندگی جو ہے وہ نیکی کی زندگی ہو، اخلاق کی پابندی میں ہو، بدکار نہ ہو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے. نمبر تین وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. اس کے معنی کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عام حالات میں واقعات میں کیا کرتے ہیں کہ عام زندگی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی شاعری شعر سن کر بھی اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی ان کی شاعری خدا دوستی کی شاعری ہے، خدا پرستی کی شاعری ہے، حکمت اور معرفت کی شاعری ہے، وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا عام زندگی میں بھی اچھے مسلمان ہیں. اور نمبر چار وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. وَانْتَصَرُوا جو ہے یاد رکھیے گا، ویسے تو نون سواد را کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا، لیکن جب وَانْتَصَرُوا کا آتا ہے نا انتصار، یہ نون کے ساتھ بیچ میں جب تا آ جاتا ہے تو اس کا یہ اس کے معنی ہوتے ہیں انتقام لینا. تو وانتصروا اور وہ انتقام لیتے ہیں من بعد ما ظلموا جبکہ ظلم کیا جاتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور ان قریب جو ہے وہ پتہ چل جائے گا الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے کہ ایہ منقلب کہ کون سی جگہ پر ینقلبون کہ وہ لوٹ کر جائیں گے. اور ظلم کرنے والوں کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کون سے شاعر ٹھیک نہیں ہیں جن کا اخلاق عادتیں بالکل غلط قسم کی ہوتی ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں وہ، اور کون سے شاعر اچھے ہیں جو کہ ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں اور جن کی شاعری اللہ کی یاد دلاتی ہے، اور وہ اگر ظلم کیا جائے تو صرف بدلہ لے لیں. ظلم کیا جائے تو صرف بدلہ لے لیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ مسلمانوں پر الزام لگائے جاتے تھے، مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر پھیلایا جاتا تھا، اور پھر ان کا جواب دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر جو تھے وہ اسلام کی ہمت افزائی کیا کرتے تھے. جیسے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی حجم کہو، کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا ان کی خبر لو اور جبریل تمہارے ساتھ ہے، کہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی. تو ظلم سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو حق کو نیچا دکھاتے ہیں، اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور رسول اللہ کو شاعر، کاہن، ساحر، مجنون کہتے تھے، تہمت لگاتے تھے، تو عام لوگ اس سے بدگمان ہو جاتے تھے. تو کیا کہا کہ پھر مسلمان اس کا جو ہے وہ انتقام لے سکتے ہیں، مسلمان بدلہ لے سکتے ہیں. تو آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ میڈیا کا دور ہے، اور تحریروں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے، مختلف طریقے سے، یعنی شاعری بھی اور ویسے بھی، اسلام کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا جا رہا ہے. تو ایسے میں جب بہتان لگایا جائے اور مسلمانوں کی حجب کی جائے، اسلام پر پھپتیاں کسی جائیں مسلمانوں کو، یا اسلام پر جو ہے وہ تانے بازی کی جائے، تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنی شاعری سے اس کا جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، پھر اس کا بدلہ لینا چاہیے. تو اس سلسلے میں اب پھر عمل کے لیے ہمارے سامنے کیا باتیں آتی ہیں کہ شاعری جو ہے وہ اسلام میں منع نہیں ہے. यानी अगर अच्छी शायरी हो, बामकसद शायरी हो और उसमें नेकी और भलाई की बातें हो, कौम को जो है उसके उसको उसको उसका भूला हुआ सबक याद दिलाया जाए, तो ये तो ऐन इबादत है। जैसे कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किया, नईम सदीकी साहब हैं, शोरश काश्मीरी है, और बहुत से शायर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी शायरी की, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी शायर थे, जैसे हजरत हसान बिन साबित, काब बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन रवाह, ये और काब बिन जुहेर, ये अंसार में से थे। फिर अब्दुल्ला बिन जुहेरी जो थे ये मुहाजरीन में से थे। तो उस जमाने में भी ऐसे शायर थे जो कि शायरी करते थे। और पहले अरब के यहाँ तो ऐसे लगता है कि हर आदमी ही, हर औरत ही शायर थी। जैसे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि वो भी शेर कहा करती थी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो जो थे, जब उनकी वफात का वक्त आया और जब वो फौत हो गए, तो उन्होंने उस मौके पे भी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने जो है वो अशआर कहे हैं। तो असल बात क्या है कि अशआर जो है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, मकसदियत वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारा पैगंबर काहिन भी नहीं है, शायर भी नहीं है, ये दोनों आमतौर पे झूठी बातें करते हैं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि जो है वो शायरी मुसलमान कर नहीं सकते या शेर सुन नहीं सकते। तो ईमानदार, अमले स्वाले रखने वाले, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले शायर जो है वो हो सकते हैं, जिनके अंदर मोमिनाना सिफात जो है वो पाई जाती हो। तो ये जो आखिरी आयत है कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जल्दी इनको जो है वो पता चल जाएगा जुल्म करने वालों को कि अय्या मुनकलबीन कलिबून, कि वो किस अंजाम से दो चार होते हैं। तो इससे मुराद है कि वो लोग जो है वो कौन सी जगह लौटते हैं, और वो जहन्नुम है। जालिमों के लिए क्या है कि जहन्नुम है जिसके अंदर जो है उनको दाखिल किया जाएगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि इस्लाम जो है वो हुदूद के अंदर रहते हुए जो है वो शायरी को भी जायज करार देता है, और रसूल अल्लाह अच्छे जो अशार हैं इनकी हौसला अफजाई भी करते थे। एक दफा एक सहाबी ने 100 के करीब उम्दा उम्दा शार आपको सुनाए, और आप फरमाते जा रहे थे कि ही और सुनाओ और सुनाओ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा शेर सुनते तो आप उसकी तारीफ करते। और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जो है वो शेर कहती थी, लेकिन खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो शायर नहीं थे। और लेकिन अच्छा शेर जो उनको मिलता तो आप उनको उसको हवाले के तौर पे आप इस्तेमाल भी करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा कि सच्ची बात जो किसी शायर ने कही लबीद का कलाम है वो ये है कि अला कुल्लु शैइन मा खला अल्लाह बातिल, कि अल्लाह के सिवा हर चीज तबाह हो जाने वाली है। इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो ये थी सूरत अश्शोरा, कौमों के इबरत के वाकयात से हमारे लिए इबरत का ये पैगाम है, यानी अमल के अब उसूल क्या निकलते हैं अगर हम सूरत अश्शोरा को जो है वो अपने सामने रखें, तो इसके नतीजे में अमल के क्या उसूल हमारे सामने आते हैं। इसमें पहली बात जो बड़ी नुमाया होकर हमारे सामने आती है वो है एक अल्लाह की बंदगी, और नंबर दो रसूल की अतात। तो आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं अल्लाह की बंदगी करती हूँ, क्या मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ, नंबर दो क्या मैं रसूल पर ईमान लाती हूँ, नंबर तीन सात कौमों के इबरतनाक जो वाकयात हैं, बल्कि आठ का आप कहना चाहिए कुरैश को भी शामिल करके, क्या उनके इबरतनाक वाकयात से मैं इबरत हासिल करती हूँ, और नंबर चार के कायनात में जो बिखरी हुई निशानियां हैं क्या मैं उससे अपने रब को पहचानती हूँ, और नंबर पांच क्या मैं जो हूँ वो हजरत यानी ये जो अंबिया हैं इनके किरदार को अपने लिए उस्वा बनाती हूँ। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुर्रत देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदाकत और उनकी वो जो दुआएं हैं। फिर इसी तरह आप सारे पैगम्बरों को देखें, सारे पैगम्बर हमारे लिए रोल मॉडल हैं, तो क्या इनको मैं अपने लिए रोल मॉडल बनाती हूँ, या फिल्मी एक्टर को, या मॉडलिंग करने वाली औरत को, या खिलाड़ी को, या दुनिया में दौलत के नशे में जो लोग हैं उनको मैं अपना रोल मॉडल बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ? और कुरान जो है ये हमारे पास अल्लाह का मोजज़ा है। तो समूद वालों ने जो है वो नाका को झुटलाया, और हमें जो है वो कुरान को नहीं झुटलाना चाहिए। क्यों? وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, तो अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की किताब पर, और फिर नतीजा क्या है कि हम आखिरत की तैयारी करें और एक बेहतरीन मुसलमान बन जाएं। और याद रखें कि हमें वतवक्कल अलल्लाहिल वतवक्कल अलल अजीजिर रहीम, हमें जो है वो जबरदस्त और रहीम रब पर तवक्कुल करना है। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।